نسأل الرسول الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یکی صاحب نے سوال بھیجا ہے کیا مرشد اپنے مرید کو آخر میں بتا دیتا ہے کہ میرے پاس تمہارا جتنا حصہ تھا وہ تم کو عطا کر دیا؟ کیا یہ اطلاع مرشد اپنے مرید کو لازمی دیتا ہے؟ جب ہم کسی ملک میں جاتے ہیں اس ملک میں جانے سے پہلے ہم اس ملک کے بارے میں کتابیں پڑھتے ہیں کہ وہاں کے قوانین کیا ہیں، وہاں کی معاشرتی اقدار کیا ہیں، وہاں کے رسم و رواج کیا ہیں، تو یہ سب ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ وہاں جا کر ہمیں کوئی دقت نہ ہو، اپنے آپ کو وہاں کی قوانین اور رسم و رواج سے فیملیرائز کرنے کے بعد ہی وہاں ہم جاتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم کسی ادارے میں جاب شروع کرتے ہیں تو اس ادارے میں اپنی ڈیوٹی ریزیوم کرنے سے پہلے ہم وہاں کے طور طریقے، وہاں کے ٹائمنگز، وہاں کا ڈسپلن، ایسی تمام چیزوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کر لیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم کسی ملک میں اگر جائیں تو وہاں ہم پرابلم میں نہیں آتے۔ ادارے میں کام کرنا شروع کریں تو وہاں ہمیں دقت نہیں آتی۔ روحانیت ایک ایسی فیلڈ ہے، ایک ایسا ڈسپلن آف نالج ہے کہ ہم اس فیلڈ میں ہم داخل ہوتے ہیں اپنے مفروضوں پر ایک عمارت ہم نے کھڑی کی ہوتی ہے، ایک شکل گھڑی ہوتی ہے اپنے ذہن میں، روحانیت یہ ہے، سنی سنائی باتوں پر ہم ایک اپنے ذہن میں خاکہ تیار کر لیتے ہیں کہ روحانیت یہ ہے، کتابوں کو پڑھ پڑھ کر ہم اپنے ذہن میں روحانیت کے معیار قائم کر لیتے ہیں۔ اور عام طور پر دیکھنے میں یہ آیا کہ 99% کیسز میں جو ایک خاکہ ہم نے اپنے ذہن میں تیار کیا ہوتا ہے روحانیت کا، اصلیت اس سے بالکل مختلف نکلتی ہے۔ اسی راہ میں جو چیز ہمیں تنگ کرتی ہے وہ ایک عادت کے ہم الفاظ پر जो उनके जाहिरी मायने हैं, सरसरी मायने हैं, हम उन पर जाते हैं, उस फिक्रे को अदा किया गया किन मायनों में, उन मायनों पर नजर नहीं होती हमारी। नतीजा ये है कि हम भटकते रहते हैं। हम रूहानियत के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन हम उस राह में जो डूज एंड डू नॉट्स हैं उनको नहीं सुनना चाहते। हम इस राह पे जाना चाहते हैं, जैसे हम किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहते हैं तो उस दाखिला लेने के लिए कुछ बुनियादी शराइत हमें पूरी करनी होती हैं। हम कोई जॉब अप्लाई करते हैं तो उस जॉब की कुछ शराइत होती हैं कि हमें उन शराइत पर पूरा उतरना होता है। हम रूहानियत की राह पर चलने के लिए उसके प्री रिक्विजिट्स भी पूरे नहीं करते। दरिया में हम उतरना चाहते हैं तो उससे पहले हम तैरना सीखते हैं कि हम कहीं डूब ना जाएं। इस राह में एक लफ्ज के हिस्सा रूहानियत का वो बहुत ही गलत फहमियां पैदा करता है। मेरे जहन में और शायद आप हजरात के जहन में भी ये हो कि मुर्शद के पास 10 किलो रूहानियत मौजूद है, उसमें से 3.5 किलो मेरा हिस्सा है, तो जब मैं अपने मुर्शद साहब के पास जाऊंगा तो वो तराजू में तोलेंगे 3.5 किलो और एक शॉपर में डाल के मेरे हाथ में दे देंगे कि ये आपका हिस्सा, ये ले जाइए। अब जब हम लफ्ज हिस्सा बोलते हैं तो उससे हमारे जहन में ये आता है। रूहानियत का मकसद इसके अलावा और कुछ नहीं है कि इंसान की ट्रेनिंग कर दी जाए कि इंसान अपनी जिंदगी को कुरान और सुन्नत के मुताबिक ढाल सके, जो उसके रोजमर्रा के मामूलात हैं, जो उसकी रोजाना की जिंदगी है, वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो। जबकि आमतौर पर जो चीज समझी जाती है वो ये है कि रूहानियत का मतलब ये है कि इंसान के पास माफोकुल फितरत कुवतें आ जाएं और वो उन कुवतों का बेमहाबा इस्तेमाल करे हालांकि रूहानियत का मतलब ये कतई तौर पर नहीं है, वो उसका गलत इस्तेमाल है। और जो रूहानियत को इस राह पर इस्तेमाल करता है उसके लिए वो जवाबदेह है, उससे जवाब लिया जाएगा। रूहानियत के जरिए इंसान को ट्रेनिंग मिलती है कि वो अखलाकियात की इंतहाई बुलंदियों पर चले जाए। रूहानियत का मतलब यह है कि वो बहसियत इंसान दूसरों के लिए नफा बख्श हो जाए। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम में बेहतरीन शख्स वो है जिससे दूसरों को फायदा पहुंचे। रूहानियत का मतलब यह है। मुर्शद के जिम्मे ये काम नहीं है कि मुर्शद आपको प्राइमरी स्कूल के टीचर की तरह हैंडल करे, कि वो बिठाए और बिठाकर आपको हिल हिल के सबक याद करने का तरीका बताए। जो आदमी रूहानियत हासिल किए हुए है वो अपने पास आने वाले शख्स को पहले ही तोलता है और जितने पानी में है उसके पास आने वाला शख्स जिस तबीयत का है, जिस नेचर का है, वो उसके मुताबिक उसको हैंडल करता है। फकीर के पास एक वक्त में बहुत से लोग आते हैं, उनमें कुछ वो भी होते हैं जो आंख का इशारा समझते हैं और उसके मुताबिक अमल करने लगते हैं। कुछ वो होते हैं जिनको इनडायरेक्टली बताना पड़ता है, कुछ वो हैं जिनको डायरेक्टली समझाना पड़ता है, कुछ वो हैं जिनके साथ रफ होना पड़ता है इंसान को। तो वो इंसान जो उसके पास आया है उसको उसकी तबीयत और उसकी फितरत और उसकी आईक्यू लेवल के मुताबिक हैंडल करेगा। मुर्शिद का काम यह है कि वो अपने पास आने वाले को ये बता दे कि व्हाट इज व्हाट, और फिर वो नजर रखे कि जहां उसके पास आने वाला आदमी ट्रैक से उतरने लगता है, जरा भी डिट्रैक होता है, गलती करता है, तो वो उसको समझा दे कि यहां तुम गलती कर रहे हो, ये ना करो। जब किसी शख्स की तरबियत मुकम्मल हो जाती है और वो समझता है मुर्शद के इस शागिर्द पर जिस पर मैंने मेहनत की है वो इस मकाम पर आ गया कि लोगों की तरबियत कर सके, लोगों को सबक दे सके, तो वो उसे किसी एक खास इलाके में भेज देगा कि वहां बैठ जाओ और वहां लोगों की तरबियत करो। ये सारा प्रोसेस ये है। अब ये सोचना कि मैं मुर्शिद के पास गया हूं तो पहले दिन वो मुझे ये बता दे कि तुम्हारा हिस्सा मेरे पास है और वो कितने किलो है, या मैंने अपने कमरे की किस शेल्फ पर जार में किसमें छुपा के रखा है, बंद करके रखा है, और चलते वक्त वो जार उस आदमी के हवाले कर दे कि ये आपका हिस्सा है, आप ये ले जाइए। वो तो उससे मुराद ये है कि उसके पास आने वाले की अपनी कैपेसिटी क्या है, उसकी इस्तादाद क्या है, उसकी सलाहियत क्या है, उसका आईक्यू लेवल क्या है, वो तरबियत को किस हद तक एब्जॉर्ब करेगा, किस हद तक सीखेगा और किस मकाम पर जा सकता है। वो एक मकाम असाबे कहफ का भी था, एक मकाम उस फकीर का भी था जो गार में जाके बैठ गया इस ईमान के साथ के रब पत्थर में बंद कीड़े को अगर रिस्क देता है तो मुझे इस पहाड़ की चोटी पर ये गार, इसके अंदर भी वो मुझे रिस्क फराहम करेगा। एक मकाम वो भी है। एक मकाम वो भी है कि फकीर जो गार में जाके बैठा और उसके गार के सामने कोई आदमी अपनी चीज खाने की भूल गया, तो इसने भूख से मजबूर होकर उसको हाथ लगाया, तो फौरन ही अंदर से आवाज आई कि ये नाजायज है। तो उसने अपना हाथ काट डाला कि ये हाथ बढ़ा कैसे किसी की चीज की तरफ, एक मकाम वो भी है। तो वो जिस मकाम तक कोई ट्रेनिंग के जरिए जा पहुंचेगा वो उसका हिस्सा कहलाएगा। अब्बास का दरमियान में डिस्ट्रैक्शंस आ जाती हैं कि इंसान सीखता सीखता डिस्ट्रैक्ट हो जाता है किसी चीज से, कोई चीज उसे लेयर डाउन कर लेती है और वो रास्ते से हटता है। अब हाफ वे रह गया बंदा, ना आगे का ना पीछे का। तो अगर मुर्शद ने कहा कि तुम्हारा हिस्सा ये है कि जैसे ख्वाजा गरीब नवाज साहब ने हजरत मुख्तार काकी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया था बाबा फरीद के बारे में कि तुम्हारा ये शागिर्द इसकी परवाज सिदरतुल मुंतहा तक है, अब अगर किसी आदमी के बारे में, अपने पास आने वाले आदमी के बारे में मुर्शद ने ये सोचा ये अंदाजा लगाया कि इसके अंदर सलाहियत मौजूद है कि ये नेकी के बहुत बड़े मकाम पर फाइज हो सकता है, उसने उस पर उस हिसाब से मेहनत शुरू की। दरमियान में उस आदमी को कोई हादसा पेश आ जाए और वो रूटीन से हट जाए, हाफ वे रह गया बंदा। तो मुर्शद तो ये कह चुका कि तुम्हारा हिस्सा मेरे पास है और वो हिस्सा इस कदर है कि तुम्हारी परवाह सिदरतुल मुंतहा तक हो जाए, लेकिन रास्ते में फर्ज कर लीजिए, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि किसी के अकलौते बच्चे की डेथ हो गई, वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, रूटीन टूट गया, अब चूंकि तरबियत पूरी नहीं थी कि वो उसको अल्लाह की मर्जी समझ के कबूल कर ले और अपने रोजमर्रा की जिंदगी में मसरूफ रहे, डिस्ट्रैक्ट हो गया, वो सिदरत मुंतहा तक न गया। तो ये कहना कि मुर्शिद हिस्सा देता है पूरा और कह देता है कि मैंने तुम्हारा हिस्सा तुम्हें दे दिया, और फिर ये सोचना भी इस राह में शायद कोई ज्यादा दुरुस्त ना हो कि मुर्शद मुझे इल्म इंजेक्शन के जरिए से इंजेक्ट कर देगा, इंट्रावेनस इंजेक्शन देगा और इल्म मेरी रगों में दौड़ने लगेगा। मुर्शद का तो काम सिर्फ इतना है कि वो आपको सीधा रास्ता दिखा देगा, आपको बता देगा कि इस रास्ते पर चलने के आदाब क्या हैं, किन चीजों से बचना है तुमने, किन चीजों पर नजर रखनी है, किन चीजों को फॉलो करना है, और उसके बाद वो उसे कहेगा कि अब तुम इस पर जितनी मेहनत करते चलो जाओगे उतना ही आगे बढ़ते जाओगे। अब ये उस आदमी की मर्जी है कि वो मेहनत कितनी करना चाहता है। हम लोग क्लास 4 में पढ़ रहे होते हैं तो हमें कतई तौर पर यह नहीं पता होता कि बादल कितनी किस्म के हैं। ये तो हमें पता होगा कि मौसम 4 हैं पाकिस्तान में, इतना हम जान लेंगे, लेकिन ये कभी नहीं जान पाएंगे कि बादल कितने किस्म के हैं। हम क्लास 8 में पढ़ रहे होते हैं तो हमें ये तो पता चल जाता है कि अल्कलाइन मटेरियल्स क्या होते हैं, एसिडिक मटेरियल क्या होते हैं, उसको कैसे पहचानना है। हम लिटमस पेपर का इस्तेमाल कर लेते हैं और उस मालूल में लिटमस पेपर डुबोकर हम देख लेते हैं कि यह एल्कलाइन है या एसिडिक है। लेकिन हम क्लास एट में ऑक्सीजन बनाना नहीं सीख पाएंगे कि ऑक्सीजन कैसे बनाई जाएगी। जब तक हम मैट्रिक पहुंचते हैं तो हम एनर्जी और पावर का फर्क हमें पता चल जाता है कि पावर किसको कहते हैं, एनर्जी किसको कहते हैं। हमें यह पता चल जाएगा कि बिजली एनर्जी है कि पावर है, बिजली कितनी किस्म की है ये हम जान लेंगे। लेकिन हमें यह कतई तौर पर यह नहीं पता चल पाएगा कि न्यूक्लियर साइंस किसको कहते हैं। जब हम एमएससी में पहुंचेंगे तो हमें ऑलमोस्ट ये पता चल जाएगा कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनता कैसे है। इसी तरह रूहानियत के अंदर हम सीखते चले जाते हैं और उस सीखने की रफ्तार को डिटरमिन ये चीज करती है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी गुजार सुन्नत के मुताबिक गुजारने की सलाहियत कितनी हुई। वो जानने की सलाहियत को जला देती है वो चीज, वो जिला वहां से मिलती है। अगर वो पहलू हमने अपना ठीक नहीं किया कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी हमने सुन्नत के मुताबिक न ढाल ली कि हम सब्र तवक्कल ईमान बंदगी इतात इसमें हम आगे न बढ़े, ये जर्की रही हमारी परफॉर्मेंस इन इन चीजों में, तो हमें इल्म हासिल करने की सलाहियत उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाएगी जितनी तेजी से बढ़ जानी चाहिए। इसलिए कि हमारा जहन दुनियावी चीजों के अंदर ज्यादा सोचने लगेगा, क्योंकि जब तक हमारे अंदर ईमान दर्जा बदर्जा बढ़ता नहीं जाएगा, सब्र दर्जा बदर्जा बढ़ता नहीं चला जाएगा, बंदगी इबादत ये दर्जा बदर्जा बढ़ती नहीं चली जाएगी, हम दुनियावी चीजों की तरफ मतवज्जो ज्यादा रहेंगे। तो जब हम दुनियावी चीजों की तरफ ज्यादा मतवज्जो रहेंगे तो हमारा जहन उधर काम करेगा। नतीजा यह है कि इल्म हम सीख नहीं पाएंगे, इल्म में हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि इल्म ऐसी चीज है जिस तरह से हम कपड़ा बुनते हैं, हम कपड़ा बुन नहीं सकते जब तक कि हम वेप्ट एंड वाफ ये दो चीजें बना लेने हैं। उसको उर्दू में ताना बाना कहते हैं। जब तक के ताना बाना ना हो उससे कपड़ा बुना ही नहीं जा सकता, चाहे हम कितनी ही आला दर्जे की लूम, जेट लूम हो, पावर लूम हो, एयर लूम हो, हैंड लूम हो, कोई सी टाइप हम लूम्स की इस्तेमाल कर लें, हम कपड़ा नहीं बुन पाएंगे कभी जब तक के ताना बाना नहीं होगा। तो ये ताना बाना जब तक रूहानियत का हम नहीं बुनेंगे, और वो ताना बाना ये है कि हम ईमान हमारा कितना पुख्ता है रब पर, तवक्कल किस दर्जे की है हमारी रब पर, सब्र हमारे अंदर किस दर्जे का है, इताअत हमारे अंदर किस दर्जे की है, बंदगी हम किस डिग्री तक की जाके कर लेते हैं। क्योंकि जब चीजें झटके लगेंगे हमें, देखिए हम में से हर आदमी कार चलाता है, हम सभी शौकीन हैं कि अपनी गाड़ी में अलॉय व्हील लगाएं, हम हम एलॉय व्हील खरीदते हैं, अगर हमें ये नहीं मालूम कि एलॉय व्हील की स्ट्रेंथ क्या है, हमारी गाड़ी का वेट क्या है, इसकी मैक्सिमम स्पीड क्या है, इसकी ब्रेक किस कदर शिद्दत से लगती है, ब्रेकिंग डिस्टेंस कितना है इसका, ये अगर हमें पता नहीं है और हमने आंखें बंद करके सिर्फ एलॉय व्हील को खूबसूरती की बुनियाद पर चुन लिया, तो इम्कानात ये हैं कि फुल लोड के तहत स्पीड पर अगर हम जा रहे हैं और हमारा व्हील अगर गढ़े में लगा तो वो व्हील क्रैक हो जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन अगर हमें यह पता है कि अलॉय व्हील की स्ट्रेंथ क्या है, कि उसे 4000 टन प्रेस पर उसको सॉलिड स्टील लंप से मैन्युफैक्चर किया गया है, एल्यूमिनियम अलॉय के लंप से, उसके डले से, लंप्स का अब तक जवाब मुझे भी नहीं आता, उस पर वो फोर्जिंग प्रेस के 4000 टन्स का फोर्जिंग प्रेस उसको शेप दे रहा है, उसके बाद उसकी मशीनिंग करके उसे उसी सॉलिड पीस में से ले लिया गया है। तो अगर हमारी गाड़ी का 2 टन वजन भी है और लोड के साथ उसका वजन 3 टन हो जाता है, तो वो सेफ है कि हम 260 किलोमीटर एन आर की स्पीड पर अगर जा रहे हैं तो गढ़े में अगर वो व्हील लगेगा तो टूटेगा नहीं, क्रैक नहीं होगा। इसी तरह जब हम रूहानियत की राह पे चलते हैं, या इसको आसान लफ्जों में कहिए कि हम रब की दोस्ती हासिल करने की राह पर चलते हैं, तो फिर वहां पे हमारे ईमान को भी आजमाया जाएगा, झटके लगेंगे कि हमारा ईमान कितना मजबूत है, हम पर मुश्किलें आएंगी, उसमें सब्र हमारा आजमाया जाएगा कि हम सब्र के किस मकाम पर चले गए हैं, रिस्क कम करके हमारा तवक्कल आजमाया जाएगा कि तवक्कल कहां है, दुनियावी मसरूफियात बढ़ाकर ये चक्कर लिया जाएगा कि इबादत, हम इबादत को तरजीह देते हैं कि दुनियावी प्रेफरेंसेस में चले जाते हैं। तो जब वो टेस्ट आएगा और हमने इसको नहीं बढ़ाया है अपनी उस इस्तेदाद को, तो हम नाकाम हो जाएंगे। अगर वो इस्तेदाद हम पैदा कर चुके, ईमान हमारा मजबूत है, तवक्कल इस दर्जे की है कि बदतरीन सूरत हाल में भी, बदतरीन नुकसान आते देखकर भी इंसान कहता है कि मेरा रब मालिक है, वो जिसने पहले अता किया था आइंदा भी अता फरमाएगा इंशाल्लाह। लोगों की तरफ से दिए जाने वाले दुख इंसान विद स्माइलिंग फेस सह जाता है, मुस्कुराता रहता है, लोगों की तरफ से पहुंचाई जाने वाली तकलीफ को इंसान बगैर कोई रिएक्शन शो किए मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ बर्दाश्त कर लेता है। अपनी मसरूफ तरीन जिंदगी में से इबादत का वक्त निकाल के इबादत कर लेता है सिर्फ इस जज्बे के साथ कि मेरा रब अजीम तरीन है और वो इस लायक है कि उसकी इबादत की जाए। फिर इंसान की तवज्जो डिस्ट्रैक्शंस की वजह से हटती नहीं है रब से, इंसान रब की तरफ हर वक्त मुतवज्जो रहता है, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, उसका जहन चलता है, मुसलसल चलता है, लेकिन चलता है सिर्फ रब की तरफ, उसके कारखाने कुदरत की तरफ। तो जब यूं दिमाग चलने लगता है तो इल्म की आमद शुरू होती है, और जिस शिद्दत से हम मुतवज्जो होते हैं, आसान लफ्जों में ये कहिए कि जिस शिद्दत के साथ हम गौर व फिक्र में मुब्तला होते हैं, इल्म उतनी ही तेजी से आता है, उतनी ही सुपीरियर क्वालिटी का आने लगता है। लेकिन वो दर्जा बदर्जा होता है, आहिस्ता आहिस्ता हम ऊपर को जाते हैं। उस इल्म की क्वालिटी वक्त के साथ साथ इंप्रूव करती है और वही परवाज है। हत्ता के इल्म का यह आलिम होता है कि इंसान जब गुफ्तगू कर रहा होता है तो खुद अपनी गुफ्तगू से खुद सीख रहा होता है। जो कुछ वो बोल रहा होता है उसे आता नहीं है, बल्कि बोलने के बाद खुद सीख रहा होता है अपनी ही जुबान से, अपनी ही आवाज से, अपनी ही गुफ्तगू से। तो फिर इल्म इस तरह आता है। अब जब ये सूरत हाल हो किसी इल्म की, किसी राह पे चलने का यह अंदाज हो, तो वहां कौन डिटरमिन करेगा कि हिस्सा पूरा मिल गया या अभी उसके अंदर कोई 10 औंस और 15 ग्राम कम है। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि साहब मेरा वो हिस्सा पूरे का पूरा दे दिया गया। हां, उसके महावरतन कहा जाता है कि जब मुर्शद आपको ये कह देता है कि आप ये पढ़िए और इसको पढ़ते रहेंगे तो जितनी मेहनत करेंगे आप बुलंदियों की तरफ चले जाएंगे, तो उसको महावरतन तो वह कह देगा कि तुम्हारा हिस्सा जो था मैंने तुम्हें दे दिया, अब जितनी मेहनत करोगे उतना फल पाओगे। लेकिन इस सेंस में नहीं कहा जा सकेगा जिस सेंस में हम जानना चाहते हैं कि मेरे मुर्शद ने कौन से वे ब्रिज पर जाकर उसको तुलवाया था मेरे हिस्से को, और उसमें 2-4 ग्राम की डंडी तो नहीं मार गया मुर्शद मेरा, तो पूरा हिस्सा दिया या नहीं दिया। ये सूरत हाल है इस राह में। हम और इसी इस राह में ये कहा जाता है कि जिस शख्स ने ये सोचा कि मुझे कुछ मिला या नहीं मिला, उसको सारी उम्र कुछ ना मिला। जिस शख्स ने यह सोचा कि मैं अभी किसी मकाम पर पहुंचा या नहीं पहुंचा, वो कभी किसी मकाम पर ना गया, नाकामियां हैं वहां। जिस आदमी ने सिर्फ एक चीज पर नजर रखी कि मुझे कुर्ब इलाही चाहिए, मुझे अपने रब की दोस्ती चाहिए, और दोस्ती उसे दोस्त कबूल करना ये रब का प्रेरोगेटिव है, मेरा हक नहीं है, तो रब को राजी करने के लिए वो जिंदगी गुजारता चला गया, उसे दोस्ती हासिल हो गई। और जिस शख्स ने ये तांग लगा ली कि अभी तक कुछ मिला या नहीं मिला, रब मुझसे राजी हुआ या नहीं हुआ, वो नाकाम हुआ। तो इसको आसान लफ्जों में हम ये कह लेंगे कि जिसने रब के साथ यकतरफा दोस्ती लगा ली बेलॉस, उसको सब कुछ मिल गया। देन इट्स ए मैटर ऑफ टाइम, सूनर और लेटर उसको मिलेगा जरूर। भाइयों, मेरी गुजारिश आपकी खिदमत में यह है कि किसी दरिया में उतरने से पहले ये देख लीजिए कि दरिया की गहराई क्या है, वहां जो करंट्स चल रही हैं दरिया में उन करंट्स की वेलोसिटी क्या है, उन लहरों की डायरेक्शन क्या है, उन लहरों का जोर क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मुझे तैरना आता है या नहीं। तो जब हम दरिया को माप लें, अच्छी तरह से नाप तोल लें दरिया को, और तैरना सीख लें, तो फिर जब हम दरिया में उतरेंगे तो इंशाल्लाह पार लग जाएंगे। लेकिन अगर सुनी सुनाई बातों पर गए कि इस दरिया की गहराई तो सिर्फ इतनी है, इसमें पानी की जो लहरें चलती हैं, इसकी करंट्स जो हैं, रॉ जो है पानी की, उसकी वेलोसिटी क्या है, उसका रुख क्या है, ये जगह जगह से सुनी सुनाई बातें मिलेंगी जो एक दूसरे से मेल नहीं खाएंगी। तो जो मेल नहीं खाएंगी, वो मेल नहीं खा रही हैं एक दूसरे से, तो हमें क्या इल्म देंगी वो, खुद उसको पर्सनली जान लें और अपने बारे में ये इंश्योर कर लें कि हमें तैरना आता है। तो फिर अगर हम दरिया में उतरेंगे तो डूबने के चांसेस बहुत कम हैं, न होने के बराबर। तो रूहानियत की तरफ अगर जाना चाहते हैं तो खुदा के लिए मैं और आप सब उन सुनी सुनाई बातों से दूर चले जाएं, रूहानियत को जान लें कि रूहानियत है क्या, उसका बुनियादी मकसद क्या है, वो उसकी मंजिल क्या है, वो हमें कहाँ ले जाएगी। अगर वो भा जाए हमें कि हाँ ये ठीक है, क्योंकि अगर मैं रूहानियत की राह पे चलने का कभी फैसला कर लूँ, कभी ये गलती हो जाए मुझसे कि मैं रूहानियत की राह पे जाने का फैसला कर लूँ, तो मेरा तो ऑब्जेक्टिव एक होगा कि मुझे ऐसी माफाकुल फितरत कुवतें हासिल हो जाएं। गुजरांवाले से कोई 10 मील दूर एक कस्बा है, अब तो खैर बड़ा हो गया होगा बहुत, गखड़ के नाम से। वहां एक साहब थे, उनके पास इस राह पे चले, और जैसा होता है कि पहले ही जब मंजिल आई और जिन्नात को देखना शुरू किया उन्होंने, तो वो ये समझे कि मैं तो बहुत मकाम पे पहुंच गया, वो वहीं रुक के रह गए, हालांकि वो मकाम है ही नहीं कोई। लेकिन हम में से अक्सर यही समझ लेते हैं कि वही मंजिल थी, तो वो लोगों के काम वाम कर देते थे। तो जब उनके पास लोग जाना कम होते थे तो वो एक काम किया करते थे, उनके पास एक एसयूवी थी पजेरो, उसमें वो गखड़ से बैठते थे और जिन से कहते थे कि वो गाड़ी चलाए, तो खुद पिछली सीट पे बैठ जाते थे। अब वो लाहौर आते थे तो पूरे शहर में एक हंगामा मच जाता था कि वो बगैर ड्राइवर के गाड़ी खुद ब खुद चल रही है, तो उससे वो पैसे कमा लेते थे। तो फिर मैं तो अगर मैं कभी ऐसी गलती करूं कि रूहानियत की राह पे चलने के फैसला कर लूं, तो मेरा तो ऑब्जेक्टिव ये होगा, लेकिन रूहानियत उसका नाम नहीं है। रूहानियत तो नाम है रब की दोस्ती का, और उसका नशा इतना शदीद है कि इंसान उससे फिर निकलता नहीं है। जलती आग में कोई डाल दे, वो उस राह को छोड़ने पर तैयार नहीं होता। लेकिन उससे पहले उसके आदाब सीख लें हम। बुनियादी चीज तो ये कि ये जान लें कि रूहानियत है क्या, रूहानियत का हसूल क्या है, उसका हासिल हसूल क्या होगा, उसे मिलेगा क्या हमें, और फिर उस पर चलने की शरायत क्या है, उनको हम पूरा कर लें। हिस्से तो कोई चीज ही नहीं है, हिस्से तो मिलते रहते हैं। तो आज जाके मैं डाकुओं के ग्रोह में बैठ जाऊं तो मैं मुझे डाका जनी के रमूज खुद बखुद मैं सीखता चला जाऊंगा। तो इस राह के लोगों के पास जाके बैठेगा इंसान तो उसके रमूज सीखने लगता है। जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं उसके पीछे हम क्यों जाएं? इंशाअल्लाह ताला बशर्ते जिंदगी अगली इतवार आपसे मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम।